दरबार 25वां बाब। और खुदावन ने कोहे सीना पर मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ तो उसकी जमीन भी खुदावन के लिए सब्बत को माने। वो अपने खेत को 6 बरस बोना और अपने अंगूरिस्तान को 6 बरस छांटना और उसका फल जमा करना, लेकिन 7वें साल जमीन के लिए खालिस आराम का सब्बत हो। ये सब्बत खुदावन के लिए हो। इसमें तू ना अपने खेत को बोना और ना अपने अंगूरस्तान को छांटना और ना अपनी खुदरो फसल को काटना और ना अपनी बेछटी ताकों के अंगूरों को तोड़ना। ये जमीन के लिए खालिस आराम का साल हो। और जमीन का ये सब्बत तेरे और तेरे गुलामों और तेरी लौंडियों और मजदूरों और उन परदेसियों के लिए जो तेरे साथ रहते हैं तुम्हारी खुराक का बाइस होगा। और उसकी सारी पैदावार तेरे चौपायों और तेरे मुल्क के और जानवरों के लिए खुरेश ठहरेगी। और तू बरसों के 7 सब्बतों को यानी 7 गुना 7 साल गिन लेना और तेरे हिसाब से बरसों के 7 सब्तों की मुद्दत कुल 49 साल होंगे। तब तू 7वें महीने की 10वीं तारीख को बड़ा नरसिंगा जोर से फुकवाना। तुम कफारा के रोज अपने सारे मुल्क में ये नरसिंगा फुकवाना और तुम 50वें बरस को मुकद्दस जानना। और तुम मुल्क में सब बाशिंदों के लिए आजादी की मुनादी कराना। ये तुम्हारे लिए युबली हो। इसमें तुम में से हर एक अपनी मिल्कियत का मालिक हो और हर शख्स अपने खानदान में फिर शामिल हो जाए। वो 50वां बरस तुम्हारे लिए युबली हो। तुम उसमें कुछ ना बोना और ना उसे जो अपने आप पैदा हो जाए काटना और ना बेछटी ताकों का अंगूर जमा करना, क्योंकि वो साले जुबली होगा। सो वो तुम्हारे लिए मुकद्दस ठहरे। तुम उसकी पैदावार को खेत से लेकर खाना। उस साले जुबली में तुम में से हर एक अपनी मिल्कियत का फिर मालिक हो जाए। और अगर तू अपने हमसाया के हाथ कुछ बेचे या अपने हमसाया से कुछ खरीदे तो तुम एक दूसरे पर अंधेर ना करना। युबली के बाद जितने बरस गुजरे हों उनके शुमार के मुआफिक तू अपने हमसाया से उसे खरीदना और वो उसे फसल के बरसों के शुमार के मुताबिक तेरे हाथ बेचे। जितने ज्यादा बरस हों उतने ही दाम ज्यादा करना और जितने कम बरस हों उतनी ही उसकी कीमत घटाना, क्योंकि बरसों के शुमार के मुआफिक वो उनकी फसल तेरे हाथ बेचता है। और तुम एक दूसरे पर अंधेर ना करना, बल्कि तू अपने खुदा से डरते रहना, क्योंकि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। सो तुम मेरी मेरास पर अमल करना और मेरे हुक्मों को मानना और उन पर चलना, तो तुम उस मुल्क में अमन के साथ बसे रहोगे और जमीन फैलेगी और तुम पेट भरकर खाओगे और वहां अमन के साथ रहा करोगे। और अगर तुमको ख्याल हो कि हम 7वें बरस क्या खाएंगे, क्योंकि देखो हमको ना तो बोना है और ना अपनी पैदावार को जमा करना है, तो मैं 6ठे ही बरस ऐसी बरकत तुम पर नाजिल करूंगा कि 3ों साल के लिए काफी गल्ला पैदा हो जाएगा। और 8वें बरस फिर जोतना बोना और पिछला गल्ला खाते रहना, बल्कि जब तक 9वें साल के बोए हुए की फसल ना काट लो उस वक्त तक वही पिछला गल्ला खाते रहोगे। और जमीन हमेशा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि जमीन मेरी है और तुम मेरे मुसाफिर और मेहमान हो, बल्कि तुम अपनी मलकियत के मुल्क में हर जगह जमीन को छुड़ा लेने देना। और अगर तुम्हारा भाई मुफलिस हो जाए और अपनी मलकियत का कुछ हिस्सा बेच डाले, तो जो उसका सबसे करीबी रिश्तेदार है वो आकर उसको जिसे उसके भाई ने बेच डाला है छुड़ा ले। और अगर उस आदमी का कोई ना हो जो उसे छुड़ाए और वो खुद मालदार हो जाए और उसके छुड़ाने के लिए उसके पास काफी हो, तो वो फरोख्त के बाद के बरसों को गिनकर बाकी दाम उसको जिसके हाथ जमीन बेची है फेर दे। तब वो फिर अपनी मलकियत का मालिक हो जाए। लेकिन अगर उसमें इतना मकदूर ना हो कि अपनी जमीन वापस करा ले, तो जो कुछ उसने बेच डाला है वो साले युबली तक खरीदार के हाथ में रहे और साले युबली में छूट जाए, तब ये आदमी अपनी मलकियत का फिर मालिक हो जाए। और अगर कोई शख्स रहने के ऐसे मकान को बेचे जो किसी फसीलदार शहर में हो, तो वो उसके बिक जाने के बाद साल भर के अंदर अंदर उसे छुड़ा सकेगा, यानी पूरे एक साल तक वो उसे छुड़ाने का हकदार रहेगा। और अगर वो पूरे एक साल की मियाद के अंदर छुड़ाया ना जाए, तो उस फसीलदार शहर के मकान पर खरीदार का नस्ल दर नस्ल दायमी कब्जा हो जाए और वो साले युबली में भी ना छूटे। लेकिन जिन देहात के गिर्द कोई फसील नहीं, उनके मकानों का हिसाब मुल्क के खेतों की तरह होगा, वो छुड़ाए भी जा सकेंगे और साले युबली में वो छूट भी जाएंगे। तो भी लावियों के जो शहर में लावी अपनी मलकियत के शहरों के मकानों को चाहे किसी वक्त छुड़ा लें, और अगर कोई दूसरा लावी उनको छुड़ा ले, तो वो मकान जो बेचा गया तो वो उसकी मलकियत का शहर दोनों साले युबली में छूट जाएं, क्योंकि जो मकान लावियों के शहरों में हैं, वही बनी इसराइल के दरमियान लावियों की मलकियत हैं। पर उनके शहरों के नवाही खेत नहीं बिक सकते, क्योंकि वो उनकी दायमी मलकियत हैं। और अगर तेरा कोई भाई मुफलिस हो जाए और वो तेरे सामने तंग दस्त हो, तो तू उसे संभालना, वो परदेसी और मुसाफिर की तरह तेरे साथ रहे, तू उससे सूद या नफा मत लेना, बल्कि अपने खुदा का खौफ रखना, ताकि तेरा भाई तेरे साथ जिंदगी बसर कर सके। तू अपना रुपया उसे सूद पर मत देना और अपना खाना भी उसे नफा के ख्याल से ना देना। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं, जो तुमको इसलिए मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया कि मुल्के कैनान तुमको दूं और तुम्हारा खुदा ठहरूं। पर अगर तेरा कोई भाई तेरे सामने ऐसा मुफलिस हो जाए कि अपने को तेरे हाथ बेच डाले, तो तू उससे गुलाम की मानिंद खिदमत ना लेना, बल्कि वो मजदूर और मुसाफिर की मानिंद तेरे साथ रहे और साले युबली तक तेरी खिदमत करे। उसके बाद वो बाल बच्चों समेत तेरे पास से चला जाए और अपने घराने के पास और अपने बाप दादा की मलकियत की जगह को लौट जाए, इसलिए कि वो मेरे खादिम हैं, जिनको मैं मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया हूं। वो गुलामों की तरह बेचे ना जाएं। तू उन पर सख्ती से हुक्मरानी ना करना, बल्कि अपने खुदा से डरते रहना। और तेरे जो गुलाम और तेरी जो लौंडियां हों, वो उन कौमों में से हों जो तुम्हारे चौगिर्द रहती हैं। उन्हीं में से तुम गुलाम और लौंडियां खरीदा करना, मां सवाए इनके उन परदेसियों के लड़के बालों में से भी जो तुम में बूदोबाश करते हैं, और उनके घरानों में से जो तुम्हारे मुल्क में पैदा हुए और तुम्हारे साथ हैं, तुम खरीदा करना, और वो तुम्हारी ही मलकियत होंगे, और तुम उनको मीरास के तौर पर अपनी औलाद के नाम कर देना कि वो उनकी मौरूसी मलकियत हों। इनमें से तुम हमेशा अपने लिए गुलाम लिया करना, लेकिन बनी इसराइल जो तुम्हारे भाई हैं उनमें से किसी पर तुम सख्ती से हुक्मरानी ना करना। और अगर कोई परदेसी या मुसाफिर जो तेरे साथ हो दौलतमंद हो जाए और तेरा भाई उसके सामने मुफलिस होकर अपने आप को उस परदेसी या मुसाफिर या परदेसी के खानदान के किसी आदमी के हाथ बेच डाले, तो बिक जाने के बाद वो छुड़ाया जा सकता है, उसके भाइयों में से कोई उसे छुड़ा सकता है, या उसका चचा या ताऊ या उसका चचा या ताऊ का बेटा, या उसके खानदान का कोई और आदमी जो उसका करीबी रिश्तेदार हो वो उसको छुड़ा सकता है। या अगर वो मालदार हो जाए तो वो अपना फिदिया देकर छूट सकता है, वो अपने खरीदार के साथ अपने को फरोख्त कर देने के साल से लेकर साले जुबली तक हिसाब करे, और उसके बिकने की कीमत बरसों की तादाद के मुताबिक हो, यानी उसका हिसाब मजदूर के अय्याम की तरह उसके साथ होगा। अगर युबली के अभी बहुत से बरस बाकी हों, तो जितने रुपयों में वो खरीदा गया था उनमें से अपने छूटने की कीमत इतने ही बरसों के हिसाब के मुताबिक फेर दे। और अगर साले युबली के थोड़े बरस रह गए हों, तो वो उसके साथ हिसाब करे और अपने छूटने की कीमत उतने ही बरसों के मुताबिक उसे फेर दे, और वो उस मजदूर की तरह अपने आका के साथ रहे जिसकी उजरत साल बसाल ठहराई जाती हो, और उसका आका उस पर तुम्हारे सामने सख्ती से हकूमत ना करने पाए। और अगर वो इन तरीकों से छुड़ाया ना जाए तो साले जुबली में बाल बच्चों समेत छूट जाए, क्योंकि बनी इसराइल मेरे लिए खादिम हैं, वो मेरे खादिम हैं जिनको मैं मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया हूं, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं।